पेज नंबर 119। और टॉपिक क्या है हमारा? सूरत अल आराफ़ में हज़रत आदम और इब्लीस की कशमकश की दास्तान। पहला टॉपिक हमने क्या देखा इसमें? पिछली कौमों की हलाकत, हलाकत अकवाम का दर्स इबरत। ये एक मेन टॉपिक था सूरत अल आराफ़ का। अब हम पढ़ेंगे शैतान यानी इब्लीस और आदम का किस्सा। पीछे हमने सूरत बकरा में पढ़ा, डिटेल से आया। इसके बाद अब उससे ज़्यादा डिटेल में सूरत अल आराफ़ में, ठीक है? तो सूरत अल आराफ़ में हज़रत आदम और इब्लीस की कशमकश की दास्तान और इब्लीस का तरीक़ वारदात भी बयान किया गया। इब्लीस ने आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया। दलील क्या है? वलम यकुम मिनस साजिदीन। इब्लीस समझता था कि मैं आदम से बेहतर हूँ, वो मिट्टी से पैदा किए गए और मैं आग से। यही वो तकब्बुर है जो मखलूक को ले डूबा। ये बात इस सूरत में हम कहाँ पढ़ते हैं? तो ये बात हम पढ़ते हैं आयत 12-12, अना खैरुम मिन्हु। इतने को हाईलाइट करें। ये आप सबकी एक्टिविटी है। मुझे नहीं पता आप एक्टिविटीज़ का क्या हल करते हैं, बाद में गौर करते भी हैं नहीं, लेकिन आप अपने बारे में ये जुमला कितनी दफ़ा दिन में बोलती हैं? हम कहेंगे एक दफ़ा भी नहीं बोलते क्योंकि अरबी नहीं आती। नहीं, अना मैं, खैर बेहतर, मिन हूँ उससे, मैं उससे बेहतर हूँ। दिन में कितनी बार मैं खुद को दूसरों से बेहतर समझती हूँ और कहती हूँ? यकीन करें आप में से कई लोग खुद को बहुत आजिज़ कहने वाले भी ये जुमला कसरत से बोलते होंगे। मैं उससे अच्छा पकाती हूँ, मैं उससे अच्छा खाती हूँ, मेरा घर बड़ा अच्छा है, मुझे लोगों को डील करना आता है, मैं अपने शौहर से ज़्यादा स्किल्ड हूँ, मैं मामला संभाल लेती हूँ, मैं की रट लगी होती है। इसको अरबी में सब जुमले को याद करें इस सोच के साथ कि जब भी कभी खुद को अच्छा समझें या कहें, कसरत से। एक होता है सच्चाई का इतराफ़, वो गलत नहीं होता, वो तो पता भी लग जाता है, लेकिन सिर्फ़ ख़ुद को अच्छा समझना ये बात दुरुस्त नहीं, और दूसरे को हमेशा ही गलत समझ देना ये चीज़ इंसान की तबाही का ज़रिया बनती है। इबलीस का यही जुमला उसको ले डूबा। फिर क्या कहता है? खलकतनी मिन नारिम व खलकतहु मिन तीन। मुझे तूने आग से पैदा किया और उसको मिट्टी से। किसको? किसके? आदम को मिट्टी से, मुझे आग से। इबलीस कितना ना समझ था, ज़ाहर पे गया, आग और मिट्टी का तकाबुल। हालांकि अगर बातिन पे जाकर देखें तो आग में हलाकत है, मिट्टी में ज़िंदगी है। सूरह तौहा में आप पढ़ेंगे, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम तारतन उखरा। हमने इसी मिट्टी से तुमको पैदा किया और इसी में हम तुम्हें दोबारा ले जाएंगे, ठीक है? तो मिट्टी में ज़िंदगी है। आज भी देखें, गीली मिट्टी पड़ी रहे तो थोड़े दिन जरासीम पैदा होते हैं, कीड़े निकलने आते हैं, और मिट्टी से ही तो आप देखिए कि पौधे, फसलें, क्या कुछ निकलता है। मिट्टी से ही पानी निकलता है जो पीते हैं, और मिट्टी में हमारी कब्रें बनती है। इसी मिट्टी में इस 5-6 फुट के वजूद ने जाना है, और यहाँ से एक ऐसा वजूद निकलना है कि जो कभी ख़त्म नहीं होगा, हम फीहा खालिदून। तो अल्लाह ताला इस मिट्टी के गुण जो है ना, इस पर गौर व फिक्र की तौफीक दे। फिर तीसरी चीज़ देखिए, इब्लीस के तरीक़े वारदात की वजाहत की गई कि वो वसवसों के ज़रिए से गुमराह करता है, बेलिबास करता है और बेशर्मी पर उकसाता है। कहाँ लिखी है ये बात? फवसवस लहुमा शैतान लियुब्दिय लहुमा मा वुरियन्हुमा मिन सौआतिहिमा। मा वुरिया, जो छुपाया गया था, मजहूल है ये, जो छुपाया गया था इन दोनों से उनकी शर्मगाहों में से, ठीक है? तो शैतान का तरीक़ा वारदात क्या है? वसवसा, सबसे पहले वसवसा, फिर लियुब्दिया, फिर बेलिबास किया उसने, ज़ाहिर कर दिया, बेशर्मी की बातें करवा दी, और फिर मिन सौआती हिमा, यानी शर्मगाहें खुल गई। हज़रत आदम और हवा को इब्लीस ने झांसा दिया कि अल्लाह ताला ने आप दोनों को इस दरख्त के पास जाने से सिर्फ इसलिए रोका है कि इस तरह आप दोनों फरिश्ते बन जाएंगे और आप दोनों को हयात दवाम हासिल होगी। जो हयात दवाम क्या होती है? हमेशा की ज़िंदगी। आयत 20, मा नहा कुमा रब्बुकुमा अन्हा ज़िही शजरती इल्ला अन तकूना मलकैनी औ तकूना मिनल खालिदीन। जी आप करें इसका तर्जुमा लफ्ज़ी।
मा नहा कुमा, नहीं मना किया तुम दोनों को रब्बुकुमा तुम दोनों के रब ने अन से हाजी इस शजरती दरख्त से इल्ला मगर अन ये के तकूना हो जाओ तुम दोनों मलकैनी फरिश्ते औ या तकूना हो जाओ तुम दोनों मिनल खालिदीन हमेशा रहने वाले।
जी मलकैन दो फरिश्ते, तस्निया है मलक का, ठीक है। ये देखिए अल्लाह के खिलाफ कर रहा है ना जालिम, कहता है अल्लाह ने तुम्हें इस डर से, इस दरख्त के फल खाने से रोका कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशगी की उम्र ना पाओ। इससे क्या पता चलता है कि इबलीस हमें अल्लाह के भी खिलाफ करता है। कभी ज़िंदगी में कोई गम दुख तकलीफ़ आए तो लोग कहते हैं मैं अल्लाह से नाराज़ हूँ, नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह ने मेरे से जुल्म किया, अल्लाह ने सारे गम मेरे लिए लिखे, आपकी जरूरत क्या हुई ये बात करने की, आपके साथ तो फिर ऐसा करना चाहिए। तो याद रखिए, दुख सुख खुशी गम सेहत बीमारी परेशानी, कभी अल्लाह के बारे में कोई नेगेटिव जुमला ना बोले। इबलीस ने दोनों से कसम खाकर कहा कि मैं आपका नासिख और खैर ख्वाह हूँ। वका समहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, आयत 21। जी आप करिए इसका तर्जमा।
और कसम खाई दोनों ने, बेशक उन दोनों के लिए कि इन्नी बेशक मैं लकमा तुम्हारे लिए, लमीना अगरता नासिहीन खैर वाहू।
देखिए एक लफ्ज़ आप लोगों ने गौर किया कि नहीं, कसम किसने खाई है? कसमा, अगर लफ्ज़ होता ना कसमा, ये आपको फ़र्क इसका पता भी नहीं चलेगा। कसम होता है उस एक शख्स ने कसम खाई, ठीक है। कसमा फाला दरबा नसरा आबदा वट एवर जो भी है, यहाँ कसमा नहीं है, कसमा काफ के बाद जो अलिफ है ना, ये वही है जो बाब इफ़ाल में चला जाता है, मुआशरा मुकाबला मनाजरा। तो कसमा हुमा में ये नहीं कि उसने कसम खाई, कसमा हुमा उसने कसम खाई उन दोनों के लिए, यानी इब्लीस ने आदम और हव्वा के लिए कसम खाई, ये मतलब है। मतलब यह कि वो उनको साबित करना चाह रहा था कि मैं तुम लोगों का बड़ा खैर ख्वाह हूँ। तो क्या पता चला इब्लीस का तकंडा? कसमें खाना, ठीक है। आगे देखिएगा, अल्लाह ताला ने बनी आदम को ये किस्सा सुनाकर खबरदार किया है कि वह अपने दुश्मन इब्लीस के दाम में गिरफ्तार होने से बचें, इसके मकरो फरेब और चालबाजियों को समझें। वो फहाशी और उरियानी पर उकसाता है। इबलीस और इसका कबीला इंसानों को देख सकता है लेकिन इंसान इन्हें नहीं देख सकते। अल्लाह ताला ने ईमान ना लाने वालों को इबलीस का दोस्त बना दिया। सारी बातों की दलील आयत 27। या बनी आदम ला युफ्तिनन्नकुमुश शैतानु कमा अखरजा बबैकुम मिनल जन्ना मिनल जन्नति यन्ज़िवन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा वक़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम इन्ना जअलना शयातीना औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। तो इसमें देखिए कि इबलीस का एक और हथकंडा, छुप के वार करता है और फितनों में डालता है और लिबास उतरवाता है और दोस्त होता है किनका, जिनके अंदर ईमान नहीं होते। अगर आप ये सिर्फ इन चंद बातों से शैतान के सारे ट्रिक जमा कर लें तो आपको उसका पूरा तरीक़े वारदात आ जाए। जैसे आप देखिए, चोर घर में जाने से पहले कहते हैं रास्ता देखता है, चंद दिन तक घर वालों की सरगर्मियाँ देख रहा है, फिर जाने का रास्ता ढूंढता है, आने का ढूंढता है, फिर जब कहीं दाखिल होता है तो सबसे पहले मेक श्योर कर लेता है कि अगर भागना पड़े तो किधर भागना है। इसी तरह शैतान भी हमें ताड़ता रहता है, हमारे ऊपर नज़रें लगाए रखता है कि किस लम्हे इस बंदे को कमज़ोर करना है। और हमारी ज़िंदगी के कुछ ऐसे लम्हे ज़रूर होते हैं जिस वक्त शैतान को पता होता है पकड़ लो इसको, और अफसोस के साथ कहना चाहिए कि वो जज्बाती लम्हे होते हैं, बड़ी खुशी के, बड़े गम के, बड़े एक्साइटमेंट के। हर शैतानी हमला बंदे के ऊपर उसकी एक्सट्रीम कंडीशन में होता है, बहुत खुश, बहुत गमज़दा, बहुत दुखी, बहुत डिप्रेस, जज्बाती, गुस्सा, ये सारी चीज़ें जो है उस वक्त बिल्कुल ऐसी है कि जैसे हाईजैकर्स गन कनपट्टी पे रख के पायलट से जहाज का कंट्रोल छीन लेते हैं। डोंट लूज योर कंट्रोल। अगर आप चाहते हैं कि शैतान से महफूज हों तो अपना कंट्रोल कभी उसके हाथ में ना दें। जो शैतान के हाथ में अपना कंट्रोल दे देता है बाद में खुद भी शर्मसार होता है, महरूम होता है। और बाद में अक्सर लोग कुछ कहते होंगे, आपको याद आएगी मेरी इस बात से, पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो जाता है, नहीं बेगम मैं ऐसे नहीं था, बस मुझे गुस्सा आ गया था, नहीं नहीं ऐसा नहीं, असल में फिर ऐसे हुआ ना, नहीं तुम्हारा कोई कसूर नहीं। कई लोगों को अपने बाद में इतराफ़ करते देखा होगा, तो आपको उनकी रियायत करनी चाहिए। अगर एक बंदा बाद में ये कन्फेस कर ले, बाद में रिग्रेट फील कर ले, गुस्सा आ गया था ये था, तो फिर उस वक्त आप इस आयत को याद कर ले कि शैतान ने इसका कंट्रोल लूज़ किया। ठीक है, उसकी वजूहात है, शैतान का कब्ज़ा किस पे होता है ये भी आप अभी पीछे ही पढ़ चुके हैं कि शैतान का कब्जा ईमान के ना होने से ज़्यादा होता है। सच्चे मोमिन के ऊपर ऐसा कोई कब्ज़ा नहीं होता। तो अल्लाह ताला से आपको मुझे ये दुआ करनी है कि शैतान कभी हमारे ऊपर इस हद तक हावी ना हो कि वो हमारा कंट्रोल ले ले। ठीक है, तो यहाँ से फिर तीसरा मज़मून देखिएगा, सूरत अल अराफ में मुतकब्बिर की आदत के रवैयों की निशानदेही। मुतकब्बिर की आदत क्या होती है? हम ये कर सकते हैं, हम ये करके दिखाएंगे, नारे मारने ले, बढ़ के बहुत तकब्बुर के साथ बड़े बन के और लोगों को अपने आगे झुकाने वाले। ये किसी मुल्क में भी हो सकते हैं, किसी इदारे में भी हो सकते हैं, किसी घर में भी होते हैं। मेरे से पूछे बगैर इस घर में पत्ता नहीं हिल सकता, मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये कुर्सी यहाँ से क्यों उठा दी, ये भी मुतकब्बिर की आदत है। तो अपने लफ्ज़ों को ख़ुद पहचानना चाहिए। सूरत अल अराफ़ में कौमों की क़ियादत के तकब्बुर का भी जिक्र तफसील से मिलता है, जिसके सबब इन्हें हलाक किया गया। अल्लाह ताला की आयत को मुतकब्बिराना रवैयों से मुस्तरद करके झुटला देने वाली मुजरिम की आदत को साफ साफ बता दिया गया कि वो हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगी। कहाँ है ये? आयत 40, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलिजल जमलू फ़ी सम्मिल हियात वकज़ालिका नज़्ज़िल मुजरिमीन। तो क्या पता चला कि मुतकब्बिरों और मुकज़्ज़िबों का जन्नत में जाना इतना ही नामुमकिन है जैसे ऊँट का सुई के नाके में से गुजरना। गुजर सकता है? अरब लोग ये जुमला मुहावरतन बोलते थे, जब कोई बंदा नामुमकिन बात को करने का मुतालबा करे, इम्पॉसिबल। कोई कह दी आसमान से सितारे तोड़ के लाओ, ये क्या जुमला है? ये भी यही जुमला है। ठीक है, कौमे समूद की काफ़र की आदत भी मुतकब्बिर थी और आम लोगों को दबा कर रखती थी। ये कमज़ोर लोग हर किस्म के दबाव के बावजूद हज़रत सालेह पर ईमान ले आए थे। आयत नंबर 75, क़ालल मल्लज़ीनस्तकबरू मिन कौमिही लिल्लज़ीनस्तुद्इफ़ू लिमन आमन मिनहुम अतअलमूना अन्न सालिहन मुरसलुम मिन रब्बिही क़ालू इन्ना बिमा उर्सिला बिही मुमिनून। قال الملأ الذين استكبروا من قومه, कहा सरदारों ने उस कौम के जिन्होंने उस कौम में से तकब्बुर किया था। यहाँ रुक जाएं, किससे कहा? लिल्लज़ीनस्तुद्इफ़ू लिमन आमन मिन्हुम, उन लोगों से जो कमज़ोर बनाए जाते थे, उन लोगों में से जो उनमें से ईमान लाए। अगर सीधा जुमला करें तो मुतकब्बिरों ने मुस्तदफीन से कहा। ठीक है, अतालमून, क्या तुम जानते हो, अन्ना सालेहन मुरसलुम में रब्बी, कि क्या साले भेजा हुआ। एक होता है मुरसिल, अगर यहाँ लफ्ज़ मुरसिल पढ़ देना गलती से कोई, तो आपको पता है कि बिल्कुल यानी शिरकिया गलती हो जाती है। मुरसल जिसको भेजा, मेरे रब्बी ही उसके रब ने, और मुरसिल होता तो भेजने वाला अपने रब को, मानी ऑपोजिट हो जाता। ठीक है, तो भेजा हुआ है अपने रब की तरफ से। कालू इन्ना बीमा और सिला बिही, कहने लगे बेशक हम साथ उसके जो तुम भेजे गए हो। वो क्या है? पैगाम। यहाँ लिख सकते हैं और सिला बिही कौन है और मुरसल उन कौन है। मुरसल इधर सवाले हैं और सिला बिही क्या है? वो पैगाम मैसेज जिसके साथ सवाले भेजे गए, मोमिनून हम ईमान लाने वाले हैं। ठीक है, तो कौम शुएब की क़ियादत भी मुतकब्बिर थी। उन्होंने हज़रत शुएब और उनके मोमिन साथियों को जिला वतनी यानी डिपोर्टेशन की धमकी दी और कहा कि आपके सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, जिला वतनी या फिर आपको हम दोबारा हमारा मज़हब इख्तियार करना पड़ेगा। आयत 88, قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا। कालल मलाउल्लज़ी नस्तकबरू, कहा उन सरदारों ने उन लोगों में से जिन्होंने तकब्बुर किया, मिन कौम ही उसकी कौम से, लनुखरिजन न कया शुएबू, अलबत्ता हम ज़रूर निकाल देंगे तुझको ऐ शुएब वल्लज़ी आमनू माका, और उनको भी जो तेरे साथ ईमान लाए। कहाँ से निकालेंगे? मिन करियतिना, हमारी बस्तियों में से, या फिर सेकंड ऑप्शन के औ या ला तऊदुन्ना, अलबत्ता ज़रूर तुम पलट आओ, फ़ी मिल्लतिना, हमारे तरीके में या हमारी मिल्लत में। ठीक है, तो हज़रत शुएब ने बुनियादी मज़हबी हकूक, जिसको राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ फेथ कहते हैं, इसकी दुहाई दी। पूछा कि क्या तुम लोग हमारी नागवारी के बावजूद अपना बातिल और मुशरिकाना मज़हब हम पर मुसल्लत करोगे? काला अवलो कुन्ना कारहीन, क्या अगरचे हमें ये बात पसंद ही ना हो, यानी आयत 88 में ही ये सारी चीज़ आ गई। तो क्या पता चला कि जब किसी के अंदर अपने ऊपर एक्स्ट्रा मान या जिसको ओवर कॉन्फिडेंट होना कह दे हो जाता है, तो फिर वो दूसरों को कुछ नहीं समझता। तो आपके मेरे लिए फिर इसमें अमल क्या था? खुद को बड़ा ना समझें, हर वक्त घर में साथ रहने वालों को अपनी मिसालें ना देते रहें। बात सासें अपनी बहुओं को सिर्फ इसलिए अपने साथ नहीं लगा के रखती कि लाशौरी तौर पर वो अपना वो मुकाम और मेयार अपने नए आने वालों के सामने रखती हैं जो अचीवेबल ही नहीं होता। तो वो बहू बेचारी थोड़ी सी तो कोशिश करेगी अच्छा होने की, लेकिन वो आप जितनी अच्छी नहीं हो सकती। फिर वो कहेगी मुझे अलग कर दें, क्योंकि अम्मी जी हर बात पर टोकती हैं, अम्मी जी को हमें अम्मी जैसी हो नहीं सकती। तो फिर हर वक्त घर में बदमजगी है, इससे बेहतर है कि हम अलग हो जाएं। तो हमेशा अपने आप को ज़रा सा हल्का करके दूसरों के सामने रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपसे भी अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। फिर इसके बाद चौथा टॉपिक देखिएगा, सूरत अल अराफ में मुख्तलिफ अम्बिया की दावत अलूहियत का तस्करा। ये आपके और मेरे लिए बहुत अहम है। देखिए नबियों ने जब तबलीग की, ना नेल पॉलिश से बात शुरू की, ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से शुरू की, साइड इश्यूज नहीं छेड़े, नमाज में हाथ कहाँ बांधने इसको नहीं छेड़ा, कोई ऐसी बातें जो लोगों को चिढ़चिढ़ाने लिए वो नहीं की। सिर्फ और सिर्फ उन सब की दावत का मेन थीम, बुनियादी नुक्ता क्या था? अल्लाह एक है और वो इलाह है और उसकी इबादत करो। इसकी अब आयतें आप कम अज़ कम नोट कर लीजिए। सूरत अल अराफ में ये बात भी वाज़े होती है कि तमाम अम्बिया ने सबसे पहले लोगों को तौहीद की दावत दी। अल्लाह ही की इबादत करो, इसके अलावा और कोई इलाह नहीं। अब इसकी मिसालें आयतों में से देख लीजिए। आयत 59 में हज़रत नूह की मिसाल है। लकद अरसलना नूहन इला कौमिही फ़काल या कौमे बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो। अलबत्ता तहकीक हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ, पस उन्होंने कहा है मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, नहीं है कोई इलाह तुम्हारा उसके सिवा। ठीक है, यही पैगाम आयत 65 में हज़रत हूद का अपनी कौम आद को था। वइला आदिन अखाखुम हूदन काल या कौमे बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो। और आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा, उन्होंने कहा है मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, तुम्हारा नहीं कोई इलाह उसके सिवा। फिर आयत 73 में हज़रत सवाले ने कौम समूद को तौहीद की दावत दी। वइला समूद अखाखुम सालिहन काल या कौमे बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो। और समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा, उन्होंने कहा है मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, तुम्हारा उसके सिवा कोई इलाह नहीं है। और आयत 85 में हज़रत शुएब ने अपनी कौम मदियन, जो कौम मदियन थी, उसको दावत दी तौहीद की। वइला मदयना खाखुम शुएबन काल या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा, उन्होंने कहा मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, नहीं तुम्हारा कोई इलाह उसके सिवा। आप देख लीजिए और भी 10 नबियों का जिक्र होता तो जुमला एक ही था। सिर्फ अगर आप शुरू से नबी और कौम का नाम बदल दें तो आखिरी हिस्सा सबका एक है। तो इसमें मेरा आपका अमल क्या है? लोगों को अल्लाह से जोड़िए, बाकी काम वो खुद कर लेंगे। जब हम किसी गैर मुस्लिम को इधर उधर की बातों में उलझाने लग जाते हैं तो फिर उसका नुकसान क्या होता है कि वो हक की तरफ नहीं आते, जो मेन चीज़ है उसको वो नहीं एक्सेप्ट करते। ठीक है, फिर पांचवा टॉपिक देखिए, सूरत अल अराफ में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की हक्कानियत की दलील है। हक्कानियत क्या होती है? सच्चाई, कि नबी सल्लम सच्चे नबी थे। इसके दलाइल भी सूरत अल अराफ में, मसलन नबी उम्मी, उम्मी कौन होता है? जिसका सोर्स ऑफ नॉलेज उसकी माँ हो, यानी बस जो माँ ने लिखा पढ़ा दिया सिखा दिया वही सीखे, किसी स्कूल मदरसे मस्जिद में नहीं गए। मुराद ये है कि अनलेटर्ड या अनपढ़ लोग जिसको कहते हैं। और अल्लाह के नबी के साथ जब लफ्ज़ उम्मी आता है तो ये आपकी शान है, आपका ऐब नहीं है, क्योंकि आपका सोर्स पीछे से अल्लाह ताला की तरफ से था। तो अगर किसी इंसान से आपने कुछ सीखा होता तो उस्ताद का असर तो उस शागिर्दों पे होता है। तो लिहाजा आपके ऊपर किसी का रंग ना चढ़े, इसलिए अल्लाह ने अपने नबी को उम्मी रखा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के लिए आपकी हकानियत की तारीखी और अमली और वाक़ियाती दलीलों पर गौर व फिक्र से काम लेने की ज़रूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की सच्चाई की तारीखी और नकली दलील ये है कि आपका जिक्र तौरात और इंजील में मज़कूर है। हर चीज़ की दलील है ना, तो आपकी सच्चाई की तारीखी और नकली, नकली क्या होता है यार? नकली जाली के मानों में नकल होती गई जो मुंतकिल, और तौरात और इंजील में ये बात नस्ल दर नस्ल नकल होती गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी होंगे। दलील आप पढ़ते हैं, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबियल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूमन इंदहुम फित तौराति वल इंजील। अल्लज़ीना जो लोग यत्तबेउना वो पैरवी करते हैं, और रसूल उस रसूल की, या नबी या जो नबी हैं, अलुम्मी या उम्मी हैं, अल्लज़ी जिसको यजिदू नहु वो पाते हैं उसको मकतूबन लिखा हुआ, इंदहुम अपने पास, फित तौराती तौरात में, वल इंजील और इंजील में। ठीक है, तो नबी सल्लम का तذکرہ पिछली किताबों में था। फिर दूसरी दलील आपकी सच्चाई की अमली और वाक़ियाती दलील ये कि आप नेकी का हुक्म देते और बुराइयों से रोकते, पाक चीज़ों को हलाल और नापाक चीज़ों को हराम करार देते यानी ठहराते, समाजी और मुआशी अदलो इंसाफ के अलम बरदार हैं, गलत अकायदों हाम के बोझ यानी इसर को लोगों की पीठों से उतारते हैं, तौहीद की साफ़ और शफाफ राह पर गामजन होकर दूसरों को भी इसी रास्ते पर चलाना चाहते हैं, शिर्क बिदत इस्तेहसाल और जुल्म व ज्यादती के फंदों से इंसानियत को निजात देकर आज़ाद करना चाहते हैं। आयत 157, यामुरुहुम बिलमारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लुहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यदउ अनहुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। इतनी प्यारी आयत है, बल्कि ये अगला हिस्सा भी इसका इसी के अंदर ही आता है, उसको भी साथ ही पढ़ लें कि आप पर ईमान लाने वाले और आप पर नाजिल किए जाने वाले नूर यानी कुरान की तबाह करने वाले ही फला पाएंगे। फल्लज़ीन आमनू बिही वज़्ज़रूहू व नसरूहू व तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माहू उलाइक हुमुल मुफ्लिहून। पूरी आयत क्या हुई कि वो हुक्म देते हैं मारूफ का, रोकते हैं उनको मुनकर से, और हलाल करते हैं उन पर तय्यबात, और हराम करते हैं उन पर खबीस चीज़ें, और हल्के करते हैं उनके बोझ और तौक जो कि उन पर पड़े हुए थे। बस वो लोग जो ईमान लाए साथ इसके अज़रूह, और उसको अज़रूह क्या होता है, स्ट्रॉन्ग करना, उनको ताकत दी या उनको मदद दी। नसरू में मदद, अज़रूह में असल में बहुत कुछ है। अज़र युअज़्ज़िरु तअज़ीर क्या होता है, किसी को स्ट्रेंथन करना, इंग्लिश में इसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, यानी ताकत दी, ये नहीं कि सिर्फ मदद कर दी, छोटी मोटी मदद एक आम लफ्ज़ है, लेकिन अज़रु उसका बहुत ही गहरा मानी है। और पैरवी की उस नूर की जो नाजिल किया गया उनके साथ, बस यही लोग हैं फलाह पाने वाले। अल्लाह के नबी के खसाइस बयान करने में इससे ज़्यादा खूबसूरत आयत पूरे कुरान में नहीं है। इस पर मैंने खुद कई बार दर्स दिए हुए हैं, ख़ास तौर पर रबी अव्वल के महीने में, लोग नबी सल्लम की ज़ात से क्या सोचते हैं, लेकिन अगर सिर्फ इसी आयत पर गौर व फिक्र किया जाए तो आपका मुकाम खुल के सामने आता है। फिर इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि वो अपनी आलमगीर रिसालत का अलल ऐलान इजहार करें कि वो ज़िंदगी और मौत का इख्तियार रखने वाले मालिक अर्ज़ो समा के सरकारी नुमाइंदे हैं। तमाम इंसानों को, जिसमें बनी इस्माईल और बनी इसराइल भी शामिल हैं, अल्लाह और इसके उम्मी नबी पर ईमान लाने की दावत दी गई। सूरत आराफ आयत 158, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन अल्लज़ी लहु मुल्कु समावाति वल अर्दी ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीत फ़ामिनु बिल्लाहि व रसूलिही नबीयिल उम्मिश। कह दीजिए लोगो, बेशक मैं रसूल तुम सबकी तरफ इकट्ठे, वो जिसने किसकी तरफ से हूँ, अल्लज़ी लहु वो ज़ात जिसके लिए आसमान और ज़मीन की बादशाहत नहीं है कोई मगर वही, वही ज़िंदा करता है वही मारता है, बस ईमान ले अल्लाह पर और उसके रसूल नबी और उम्मी पर। तो आप देखिए कि सूरत अल अराफ का एंड कितना खूबसूरत हो रहा है कि उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को चैलेंज किया गया और लोगों को बताया गया कि अगर तुम्हें इसके मुकाबले में कुछ और दिखता है तो उसकी बात करो। तो यहाँ पे सूरत आराफ के मजामीन तो पूरे हुए, अब इनका एक हल्का सा खुलासा नज़्म कलाम यानी सिमेट्री कह लीजिए या तरतीब कह लीजिए, सूरत आराफ 8 पैराग्राफों पर मुश्तमिल है, और ये हिस्सा वही है जो कि पहले पेज पे हम नज़्म जली की सूरत में देखते हैं, फ्लो चार्ट। अब ये उसी को बस लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, बातें ये सारी कर चुके हैं हम, सिर्फ कह लीजिए कि एक पेज पे सब कुछ लिख के आपको कहा जाए कि इसको जुमलों की सूरत में लिखें तो ये वो कैफियत है। ठीक है, पहले और आखिरी पैराग्राफ में दावत तौहीद को दोहराया गया, दरमियान के 6 पैराग्राफों में 6 कौमों की यके बदीगरे हलाकत के सच्चे वाक़यात हैं। दोहरा लेते हैं, आयत 1 से 8 पहला टॉपिक, पहली तमहीद क्या थी, इंट्रोडक्शन था। इसके अंदर 5 ज़ेली पैराग्राफ थे, यानी अब इसके अंदर सब पॉइंट्स 5 हैं। पहला सब पॉइंट के पहली आयत 1 से 10 तक, नज़ुले कुरान का मकसद इंज़ार है यानी वार्निंग, ये नोट कर ले। कुरान का नज़ूल क्यों हुआ, लियुन्ज़िरन्नास, लोगों को डराया जाए, वॉर्न किया जाए, लोग देखे नहीं डरते ना तो फिर उनको डराना पड़ता है। तौहीद रिसालत और आखरती दो मजामीन का इहाता किया गया, कुरान मजीद का इत्तबा करने और दीगर औलिया, औलिया क्या होते हैं, जिनको बंदा बड़ा समझता है उनके पीछे, उनकी पैरवी तरक करने का हुक्म दिया गया, वरना पिछली जालिम कौमों की तरह अजाब नाजिल हो सकता है। रोज़े क़यामत तमाम रसूलों से, इनकी कौमों से जिनमें वो मबूस किए गए, बासपुरस होगी। आयत 6, फलनसलनल्लज़ीन अरसिल इलैहिम वलनसलनल्मुरसलीन। अब इसका तर्जमा करते हुए आपको कई ऊपर नीचे के लफ्ज़ देखने पड़ेंगे। फ़ा पस लाम अलबत्ता नसलन्ना, हम सवाल करेंगे अल्लज़ीन उन लोगों से, अरसिल इलैहिम भेजे गए उनकी तरफ, ये कौन है, कौमें। वला नसलन्ना, और हम ज़रूर सवाल करेंगे अलमुरसलीन रसूलों से भी, यानी कौमों से भी सवाल होना है और नबियों से भी। रोज़े क़यामत जिसका नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो फला पाएगा, और जिसका हल्का होगा वो खसारे में होगा। याद है आयत, फमन साकुलत मवाजीन हु वाली आयत, इसके ऊपर एक लेक्चर भी है, किसके पलड़े भारी, और उसमें हमने वो सारे अमाल कुरान और सुन्नत से जमा किए गए हैं कि जिसमें नेकियों को भारी करने के तरीके हैं। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। रोज़े क़यामत जिसका नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो फला पाएगा, जिसका हल्का होगा वो खसारे में होगा। अल्लाह ताला हलाकत के बाद दूसरी कौम को तमकीन, तमकीन क्या होता है, अख्तियार देना, मलकियत का अख्तियार देना, कि तमकीन अता करता है यानी मकान देता है, मतलब ये कि रहने की जगह, खड़े होने की, कि किसी और को मौका देता है, रिस्क देता है, लेकिन लोग शुक्र नहीं करते। आयात 11 से 25 पर मुश्तमिल दूसरे ज़ेली पैराग्राफ में किस्से आदम और इबलीस सुनाकर आदम की औलाद को इबलीस के शर से बचने की हिदायत की गई। इबलीस को गुरूर था कि वह आदम से बेहतर है। आयत 12, इबलीस ने कसम खाई कि वह इंसानों और जिन्नात को गुमराह करके रहेगा, आगे पीछे दाएं बाएं से हमला करेगा, जिसके नतीजे में वो लोग ना शुक्रे बन जाएंगे। आयत 17, इबलीस ने झांसा देकर आदम और हव्वा की सतरें एक दूसरे के लिए खुलवा दी। इबलीस का तरीका वारदात यह है कि वह इंसान को झूठी बातों और आरजुओं में उलझा कर बहकाता है। आदम हव्वा को इसने ये कहकर बहकाया कि तुम फरिश्ते बन जाओगे, तुम्हें मौत नहीं आएगी अगर तुम इस दरख्त को चख लोगे। आयत 20, इबलीस ने कसम खाकर कहा, यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारा सच्चा खैरख्वाह हूँ। आयत 21, ये भी नोट करें, इबलीस की आदत है कि वो खुद को बहुत मुखलिस करके दिखाता है और कसमें खाकर अपनी सच्चाई साबित करता है। आदम और हवा की तौबा पर अल्लाह ताला ने दुआ सिखाई, रब्बना ज़लमना, और इन्हें माफ़ करके ज़मीन की खिलाफत अता की। आयत 23-25, तो अगर आप ये दुआ तफसील से पढ़ना चाहें तो इस आयत में से पढ़ सकते हैं। आदम और इबलीस दोनों को आज़ादी इख्तियार यानी फ्रीडम ऑफ चॉइस अता की गई, दोनों ने हुक्म अदुल्ली की यानी ना माना, लेकिन आदम ने अपनी गलती तस्लीम कर ली जबकि इबलीस अपनी गलती पर अड़ा रहा। फिर इसी तरह से आयत 26 से 34 पर मुश्तमिल तीसरे ज़ेली पैराग्राफ में इबलीस के तरीक़ाकार की वजाहत की गई कि वो फहाशी और उरियानी पर उकसाता है, जो फितरत आदम और इब्ने आदम के ख़िलाफ़ है। सतर पोशी इंसानी फितरत में दाखिल है। आयत 26, अल्लाह ताला ने बनी आदम को ख़बरदार कर दिया कि वो इबलीस की बातों में आकर उरियानी और फहाशी का इर्तकाब ना कर बैठें। आयत 27, इबलीस और दीगर जिन्नात इंसानों को देख सकते हैं लेकिन इंसान इन्हें नहीं देख सकता। बनी आदम को तौहीद पर कायम रहने, इबलीस के दाम से बचने, आखरत से डरने और तकवा का लिबास इख्तियार करने की ताकीद की गई। आयत 30, वक्त इबादत जीनत इख्तियार करने और खाने पीने का हुक्म दिया गया लेकिन इसराफ से बचने की तलकीन की गई। आयत 31, 31, जिस तरह फहाशी और रेयानी वगैरह जैसी हराम चीज़ों को हलाल कर लेना गुनाह है, इसी तरह अल्लाह ताला की तरफ से हलाल करदा रिस्क और जीनत को हराम कर लेना भी जायज़ नहीं। आयत 32, قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق, कह दीजिए कौन है जिसने हराम किया अल्लाह की उस जीनत को जो उसने अपने बंदों के लिए निकाली, और पाकीज़ा चीज़ें भी रिस्क में से, यानी पाकीज़ा को कौन हराम करता है और जीनत को कौन हराम करता है। अल्लाह ताला ने शिर्क और ज़ाहरी और बातनी फहाशी, गुनाह और ज़्यादती, और अल्लाह से इन बातों को मंसूब करने को हराम ठहराया जो अल्लाह ने नहीं बयान की। नाफरमान कौमों की हलाकत का वक्त मुकर्रर है, तो इससे क्या पता चलता है कि जिस तरह हराम को हलाल नहीं कर सकते तो हलाल को हराम भी नहीं कर सकते। आयत 35 से 53 पर चौथा हिस्सा है इसी टॉपिक का, और वो क्या है, कारे रसालत की वजाहत, जिसके नतीजे में लोग जन्नती या दोजख़ी बन सकते हैं। बनी आदम की हिदायत के लिए कानून रिसालत बयान किया गया, इनके पास मुसलसल पैगंबर आते रहेंगे, हिदायत की तरफ दावत देंगे, इन्हीं की तालीमात की पैरवी और अदम पैरवी की बुनियाद पर जन्नत और दोजख का फैसला होगा। दोजख में इंसानों और जिन्नात की नस्लें यके बाद दीगरे दाखिल की जाएंगी। हर नस्ल और हर गिरोह अपने पिछले ग्रोह के लीडरों पर लानत करेगा कि इनकी वजह से हम दोजख में दाखिल किए गए, इनके लिए दुगने अजाब का मुतालबा करेंगे। कुरैश को बिलखसूस और तमाम इंसानों को बिलमूम, आबा परस्ती और रिवायत परस्ती को छोड़कर। आबा परस्ती क्या होती है, باپ دادا کے اندی تکلیم جو وہ کرے آپ نے کرنا، روایت پرستی کیا جی، یہ تو ہماری روایتیں ہیں، بیٹی کو تو پیلا جوڑا پہنانا ہی پڑتا ہے اور یہ رسم تو ہوگی، تو یہ سب یاد رکھے روایت پرستی ہے. قرآن کی دعوت توحید پر غور کرنے کی دعوت دی گئی، آیت 39، اہل تکذیب اور اہل تکبر کے لیے دوزخ میں آگ کا بچھونا اور آگ کی چادریں ہوں گی اور اہل ایمان کے لیے باغات ہوں گے، 41 سے 42، جنت میں اہل ایمان کے دلوں کی باہمی کدورتیں دور کر دی جائیں گی، یعنی دل کے میل اتار دیے جائیں گے. اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان مکالمہ ہوگا، اہل دوزخ بھی اعتراف کریں گے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، آیت 44. کیا پتہ چلا کہ جنت والوں کی باتیں بھی اسی میں کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے یہ سارا کچھ بتا دیا. اور اس میں ایک خاص ٹاپک ہے اصحاب اعراف کا. اہل اعراف بلندی پر کھڑے ہوئے لوگ اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں کو دیکھ سکیں گے، جنت والوں کو دیکھ کر انہیں سلام کریں گے اور کہیں گے ہم ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن اللہ سے امید رکھتے ہیں، آیت 46. کیوں نہیں ابھی داخل ہوئے؟ کوئی برائی کوئی گناہ رکاوٹ بنا ہوا ہے. دوزخ والوں کو دیکھ کر دعائیں کریں گے، رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، آیت 47. اہل دوزخ اہل جنت سے پانی اور رزق مانگیں گے جو ان کے لیے حرام ہوگا، آیت 50. یعنی مین کہ دنیا میں انسان حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا لیکن وہاں جنت کی نعمتیں ان کے لیے حرام ہو جائیں گی. پھر اسی طرح سے شفاعت کے باطل تصور کی نفی کی گئی، اہل دوزخ دوبارہ دنیا میں بھیجنے کی درخواست کریں گے لیکن قیامت کے بعد دوبارہ عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا. اور آیت 54 سے 58 پر مشتمل پانچوں ذیلی پیراگراف میں دلائل توحید بیان کیے گئے. نمبر ایک، اللہ خالق ہے، ہر چیز کو اس نے مسخر کیا، یعنی توحید ربوبیت اور توحید خالقیت سے استدلال کرتے ہوئے توحید حاکمیت کو اختیار کرنے کی دعوت دی گئی، اللہ لخ الخلق والامر، آیت 54 میں. پھر توحید دعا ہے، یعنی توحید دعا کا مطالبہ اور فساد سے دور رہنے کا حکم دیا گیا، خالص توحید اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی. اللہ کو چپکے چپکے گڑ گڑاتے ہوئے خوف اور طمع کے ساتھ پکارنے والے محسن ہوتے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیتا انہ لا یحب المعتدین، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، آیت 55-56. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ودوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اور ایک خوبصورت تمثیل کے ذریعے انسانوں کو دعوت شکر دی گئی، قرآن کی بارش سے زرخیز دل رکھنے والے ہی ایمان لا کر نیکیوں کی فصل اگا سکتے ہیں، آیت 58. تو یہاں پہ پہلا پیراگراف پورا ہوا. سارے پیراگراف کا خلاصہ کیا تھا؟ اللہ کی توحید کے دلائل مختلف اینگل میں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھا گیا. یہاں سے آپ کے میرے لیے بھی عمل کی بات ہے کہ اللہ کو ایک ماننا کتنی بڑی چیز ہے. آج ہمارے بہت سارے عمل اور ہماری گمراہیاں اس کا سرا اگر آپ ڈھونڈیں نا تو پیچھے سے ہماری توحید کا پختہ نہ ہونا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں کو اس کے ایک ہونے پہ جما لیں. انشاءاللہ یہاں پہ رک جائیں گے اور کنٹینیو ہوگا کل آگے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.